पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आत्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करें। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं, तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया, कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा। नहीं जी, मुझे मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, अभी तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं। अपुणात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर या माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझावे कुआ बांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से, एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारा भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अब पुण्य आत्माओं, काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के, तो उस वहां से वो चल पड़ा, कहां आ गया उसी कोमन स्वर्ग में इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं। कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर आपको क्या टेंशन होगी, आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी सच्ची बात बता, कहानी के है भगवान विष्णु को सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हो, तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है। तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ तब यहां आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहां भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा भाई मैं कैसे करूं, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा, अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए और ऋषि जी और ऋषि जी है, वो तो फुलवा भर रही थी उसमें अभिमान की, और अभिमान वाला पंचर हुए बिना भगवान मिले नहीं, जो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु उसका पंचर दिया कर, चैतन्य लाभ चाहिए गुरु बना, राजा जनक को बना, वह अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा लगा ऋषि जी का और उसकी उस सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंग जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए, और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है। जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इसी घाटियों में चले जाए, कभी जा ही नहीं सकते, तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरा लठ मारे निकाल दिया घर से, मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3-1 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अट गया, पाछे बैक अट गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पार हो जावे। एक हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा, वो बात याद आ गई उसको उसी समय, वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पुत्र अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा बेटा आ जा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था, भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था, अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु यो नहीं पावेगा नालायक, तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता? तो फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है विष्णु जी ने कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ऋषि हूं, मैं कैसे मत्था टेकूं उसके गुरु को? तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा, बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कहकर व्यास जी रोने लग गया। रन ना लायक तू, किसा जन्म तू, के मनुष्य जीवन पाया तूने? ये पिछले संस्कार है जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहेब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख जीव है, एक सिद्धि बहुत चोले धारे, एक सिद्धि जीव हंस नहीं आ रहे। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूक कर नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा, बहुत प्रेरणा की, जब वो चला वो नालायक है। अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में छायल, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, एक वोथा सा बांध रखा है हुए की कपड़े का, और कमर पर डाल सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धनभाग हमारे, ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं, धनभाग हूं, आज कैसे दया हुई, साधु तो राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं आसन पर नहीं बैठूंगा मैं, जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तने फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी सारी जाड़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, जनक जी ने वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन इसके वस्त्र बिछाओ, और कोई असुविधा ना हो। और उसको पता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए, और वो लड़की भी रात्रि में उसके तकत पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थी। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा एक फुट आगे को सरक गए, लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी, तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना, मैंने मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही, उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैं निकट जाऊं थी, यो आगे न बाजे था, मैं निकट जाऊं थी, यो सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करन लग गए, कहने लगे आप यहां बैठ जाओ, उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000, उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं नहाऊंगा, यहाँ ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया पानी, जैसे चाय बनाते समय उबाला करे, और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के स्नान के लिए कपड़े निकालकर राजा जनक धोती धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहती, वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में गिरे, सिर में रात से नुआवे मसल मसल का, और वो पानी डाले राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़े अगदल गया। अब उसको ये हो गया कि यू जलेगा राजा, और वो पानी गिरे वो नूक से अकमरेगा, यू इसे जलते पानी में उबलते में नावे। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, हे महर्षि, हे ब्रह्मचारी, आजा मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी इसमें उंगली दे दे तो न जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है। न बोला मैं ना जू आंगली जल जा मेरी तय है। राजा बीहंस दई जब तारी, राजा ने नो अथेली पिटी नो ताड़ी बजाई, रसे और हमें स्नान करावे नारी के तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा है, स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भगतनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता इस उबलते हुए पानी से मेरे ऊपर गेरा नुआन लाग रही, तेरा कलजा पाट गया इतनी दूर ते बना फिर मैं ऋषि। कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा? सुखदेव समझ गया सारी कहानी तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तू महर्षि पा क्या फिरे था जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चार पाई पे, तो उस तो दूर के हो गया भूतनी थी वह खा ले हो, जब तू आत्म ज्ञान भी था तो भी इतने ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटी है बहन है बैठ साथ में, आप जैसे पुण्यात्मा हो आत्म ज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा। कैसे? जैसे पहले सांग होया करते गांवों में सांग, जैसे आजकल ये फिल्म बनती है ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का 16 साल का, और वो सांग में एक लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे। एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा जा सांग देख कहाँ। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है। वो लड़का कहता कि लड़की नहीं है ये तो लड़का है। बोला नहीं, बोला नहीं लड़की है, लड़का है। तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ क्यों ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में गांव में नगर में चौपाल में रुके हुए थे धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहां लेकर गया उनके पीछे पीछे सांग समाप्ति के उपरांत, उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था। तो वहां जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए, वो लगा रखे थे जो ब्रेजर वगैरह नकली, वो लड़का का लड़का, तो उन्होंने कह रहा है साचे ही वो लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया वो सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था लड़के ने, लड़की का रोल था पर उसका कति मन में नहीं आई लड़की है। तो आत्म ज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर दोब डाल रखे हैं, आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा जनक जी ने तेरे ज्ञान तो टट्टूगा नहीं, बात बना फरा ब्रह्मचारी, जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि इसमें मेरे मंत्र क्या है, तो तूने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा। कान पकड़ लिए उसने, ने बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मत, अब मुझे नाम दे दो कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं अब सुखदेव ऋषि को राजा जनक से उपदेश मिला, और फिर वो कहां तक पहुंचा? स्वर्ग में, आगे पाछे नीम तले, इनका जितना व्योग था, यहां से स्वर्ग में, स्वर्ग में अपनी मलाई खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में, और फिर कभी दाव लगे मनुष्य जीवन का, तो फिर हुआ प्रोसीजर शुरू। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये भी मान ले, ये भक्ति भी की गुरु भी बनाए और फिर भी यही धक्के खाए, तो इसके लिए हमने सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सतगुरु के पास वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्वती जी को केवल 5 नाम प्राप्त हुए, उनकी भक्ति शक्ति से उसकी आयु इतनी एक्सटेंड होगी, जब तक भगवान शिव रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और शिव जी की मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे। ये भी अब ये भी गुरु थे, राजा जनक भी गुरु थे, और गुरु बनकर वो उपदेश दीक्षा भी देते थे जैसे सुखदेव को दिया। फिर वही राजा जनक पहले जन्म त्रेता युग में तो राजा जनक थे, सतयुग के अंदर ये कौन थे, ये राजा अम्बरीश थे और भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा जैसे शुद्ध पुरुष भी हार मान कर गए थे जब ये सतयुग के अंदर भक्ति करते थे, राजा भी थे, और अपने पुनों को स्वर्ग में खत्म करके ये फिर क्या बने, नानक जी के रूप में जन्म हुआ, श्री नानक देव जी के रूप में तलवंडी में। और फिर पहले तो राजा थे, इनके नौकर हजारों नौकर होते थे, और वही आत्मा फिर श्री नानक देव जी के रूप में सुल्तानपुर शहर के एक नवाब के यहां स्वयं नौकरी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा उस परम अक्षर ब्रह्म ने अकाल मूर्त ने सतपुरुष ने आकर वो आत्मा संभाली, उनको सतलोक सचखंड से परिचित कराया, फिर वापस छोड़ा। और तब सतनाम ये सारे मंत्र दिए, पांचों मंत्र भी दिए, फिर सतनाम दिया, तब उस पुण्य आत्मा का मोक्ष हुआ। पहले वो स्वयं गुरु बनकर औरों को ज्ञान देते थे जनक रूप में, और फिर स्वयं भी यहीं भटक रहे थे। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाने से ये सभी झंझट मिट जाते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे मैं ऋषि वो साधना कर कर कभी ऐसी विरान माटी हुई गदा बनिया, अब तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग, वो पूर्ण मोक्ष मार्ग, यानी तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा यहां से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा और मोक्ष होगा। और यहाँ के जितने यादगारें हैं इनमें जाने से केवल उन भगवानों की याद अवश्य आती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, वह भगवान नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आप जी को वो संत खोजना पड़ेगा। कौन सा? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, उसकी वाणी में लिखा, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है, उस तत्वदर्शी संत से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताएगा, वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, ये कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव लिखा है, कुरान शरीफ में उनको अल्लाहु अकबर, कबीरा खबीरा, कबीरन खबीरन लिखा है। अल्लाहु अकबर, कबीर कहो अकबर कहो, ये बोलने की और लिखने की अपनी अपनी मातृभाषा के आधार से भिन्नता हो जाती है। जिसको कबीर का अर्थ मुसलमान भाई करते हैं, कबीर मीन बड़ा, तो पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेके 59 तक 59 तक कुरान शरीफ का जो ज्ञान रहता है वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तू मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना, और ये काफिर, ये तेरा जो विरोध कर रहे हैं ये काफिर हैं, ये उस कबीर को परमात्मा नहीं मानते, तूने इनके साथ संघर्ष करना है। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना, कतलेआम करना नहीं होता, जिहादन कबीरन, जब जिहादन कबीरा, यानी कबीर जी के लिए, उस कबीर अल्लाह को तू प्रभु मान, उसके लिए तू संघर्ष कर, इनकी वार्ता में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठे, और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, मैं उससे परिचित नहीं हूं। इससे सिद्ध हो गया, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं और ये भी मानते हैं कि हमारे अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो हमारा गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, तो वो खुदा तो किसी और पूर्ण परमात्मा कबीर नामक परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा कि वो है पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, और उसकी खबर किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो कौन है? कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में, सचिदानंद घनपन की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गयो, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अब मिले थे, फिर सचखंड लेकर गए थे, आदरणीय मलुकदास जी को ऐसे ही कृपा बख्शी थी, आदरणीय दादू साहिब जी के ऊपर ऐसी कृपा बख्शी थी, आदरणीय नानक साहिब जी के ऊपर भी ऐसी कृपा बख्शी थी, वो सतपुरख कबीर देव, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो स्वयं चल कर आए थे सतलोक से और सचखंड दिखा करके उनको वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण के अनुसार कि वो ऐसा ही करता है, वेद भी ये गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो वहां से गति करके नीचे अच्छी आत्मा को मिलता है, उसको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराता है। इसी विधान अनुसार वो परमेश्वर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ाने जिला दर वाले को, और आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले, गांव खेकड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे लेकिन उनका इतिहास बंद कर दिया गया, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो, और यहां मोहम्मद जी के 180,000 अनुयायी मुसलमान बन गए थे। मुसलमान का वो अर्थ होता है जो सर्व विकारों से दूर हो, बीड़ी शराब तम्बाकू किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता हो, नेक आत्मा को मुसलमान कहते। ऐसे हिंदू वही होता है जो बुराइयों से दूर हो, ईसाई भी उसी को कहते हैं जो ईसा जी के नियमों का पालन करता है, क्योंकि कोई भी संत या कोई ग्रंथ किसी को भी व्यसन करण का आदेश नहीं देता, आज्ञा नहीं देता। तो इस प्रकार हजरत मोहम्मद जी की यहां बहुत महिमा होगी थी, तो उन्होंने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, नीचे की चाह उसकी मिटी नहीं। जैसे धर्मदास जी को लेकर गए, धर्मदास जी ने वहीं कहा भगवान मुझे वापस ना भेजना उस गंदे लोक में, फिर परमात्मा ने उनको इसलिए भेजा कि बेटा तू वापस जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरा गवाह बनना कि कबीर इज गॉड है। क्योंकि इस काल ने और इस काल के दूत गुरुओं ने, काल से प्रेरित प्रेरणा, इन्होंने सबको मिसगाइड कर दिया है, भक्ति का नाश कर दिया है, अध्यात्म ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने एक बार भी नहीं कहा, वो अंतर्यामी सारी समझ गए, उनको कोशिश भी की तू यहां रुक, लेकिन मोहम्मद जी वापस आ गए। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, گرج بیرج ایک کلمہ لایا، روزہ بنگ نماز دئی رے، بسمل کی نہیں بات کہی رے. کبیر صاحب جی کہتے ہیں کہ اس کو روزہ بنگ اور نماز کرنے کا ہی کو کہا تھا، لیکن حضرت محمد جی نے بسمل کرنے کی بات کسی کو نہیں کہا. یہ تم نے بعد میں اپنے آپ یہ برائی اور چالو کر دی ہے. نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کہایا، ایک لاکھ اسی کو سوگند جن نہیں کر جلایا. کبھی پرماتما کہتے ہیں تم ان مہاپرشوں کے انویائی ہو مسلمان، ان ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان پیور بنے تھے، انہوں نے کبھی کرد نہیں چلائی، نہ کوئی ایسے بلی دی، کسی پرکار کی کوئی عید بقرعید نہیں منائی. اس طرح سے عرش کرش پر علی تکت ہے، عرش کرش پر، عرش مانے آسمان کے، کرس مانے انتم چھور پر یعنی ستلوک میں، عرش کرش پر اللہ تکت ہے اس کبیر پرمیشور کا، وہ مکتی دھام ہے، ستلوک ہے، اور خالق بن نہیں خالی یعنی اس پرماتما کی درشتی سے کوئی بھی جیو بچا نہیں ہے، وہ سب کی جو ہے نا خیال رکھتا ہے، سب پہ نظر رکھتا ہے، وہ سب اسی کے پرانی ہے. عرش کرش پر اللہ تکت ہے خالق بن نہیں خالی، وہ پیغمبر پاک پرش تھے صاحب کے ابدالی. ایک لاکھ اسی ہزار جو مہاپرش ہوئے ہیں مسلمان، وہ تو پرماتما کے کرپا پاتر تھے، وہ پیغمبر جتنے ہوئے ہیں، اور آپ جی ست سے اپریچت ہو کر کے ان کے ارتھ غلط کر بیٹھے. ایسے ہی ویدوں کے گاتا ویدوں سے اپریچت ہیں. اس لیے پرمیشور نے کہا ہے گرواں گام بگاڑے سنتو، گرواں گام بگاڑے، ایسے کرم جیو کا لاجیے ایو جڑے نہیں جھاڑے. ایسی برائی میں گرست کر دیے. بھگت بتا رہے ہیں نیپال سے آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں ایک پشو پتی کا مندر ہے، اور ایک ورس میں وہاں لگ بھگ 2 کروڑ جیووں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، خون کی ندی بہائی جاتی ہے. یہ کون سے گرنتھ سے لائے یہ پوجا یہ لوگ؟ یہ نقلی گروہوں نے ایسا ظلم کیا ہمارے اوپر، پن کے ستھان پر پاپ شروعات کروا دی. گرواں گام بگاڑے سنتو، گرواں گام بگاڑے، ایسے کرم جیو کا لاجیے ایو جڑے نہیں جھاڑے. بھیرو بھوت مسانی پوجے درگا دیوی جاویں، اور اتی کہ تو تب ہی بات جائے جب بکرے آن کٹاویں. بیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے یہ بادو ندی بھیہنگا، گریب داس ہوئے بھوجل ڈوبے جن کو نہیں ساد ستسنگا. آدنی گریب داس صاحب جی گاؤں چھٹانی والے کو پرمیشور ملے تھے، جاتم گیان سے ان کو پریچت کروایا، اور پوری ویوستھا برمانڈوں کی ان کو آنکھوں دکھا کر واپس چھوڑا تھا. تب گریب داس صاحب جی پرماتما کے دیے گیان کو کیسے ورنن کر رہے ہیں، بھیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے بادو ندی بھیہنگا، گریب داس ہوئے بھو جل ڈوبے نہیں ساد ستسنگ. جیسے بھادوا مہینے میں ورثہ وشیش ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اب تو فرق پڑ گیا ہے، پہلے بہت تگڑی ورثہ بھادوا میں ہوا کرتی تھی، اور اس سمے یہ دریائیں گنگا جمنا جتنے بھی کاویری جتنی ہیں، یہ بھادوے کے مہینے میں، جیسے سردیوں کے موسم یا گرمی کے موسم میں ان کا پانی کچھ بہت کم ستھان گھیر کر چلتا ہے، اور بھادوے کے سمے میں تو اور پھلو اگر چل پڑتی ہیں. تو ایسے بھینکر دریا کو آپ نے پار کرنا ہے، یعنی ستلوک جانے کے لیے کال کے اس جال کو پار کرنا ہے. اس کے لیے دریا سے پار کرنے کی کسی کی اچھا ہو اور اس کو کوئی سادھن دے دے وے، بتا دے وے کہ بھیڑ کی پوچھ پکڑ لے یا تجھے پار کر دے گی، تو کیا وہ بھیڑ کی پوچھ پکڑے بیٹھا ہے اور کوئی اس سے پوچھتا ہے تو کیا کر رہا ہے کہ دریا سے پار ہوں گا، गुरु जी ने बता रखे है, ये मुझे पार कर देगी। कहने लगे कभी नहीं कर सकती, तुम भी डूबोगे, ये भी डूबेगी। तो ऐसे ही जो अन्य साधनाएं एक तत्वदर्शी संत ना मिलने से, अन्य जितने भी नकली गुरु काल प्रेरित हैं जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, उनके द्वारा बताई गई साधनाएं भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी आपको। तो इस भवजल से रूप, इस दरिया से, संसार रूपी दरिया से आप पार नहीं हो सकते, डूबोगे यहीं पर। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास हुए भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संग। जिसको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो इस संसार रूपी समुद्र के अंदर यही जन्म मरण के चक्कर में ही डूब जाएंगे, रह जाएंगे। मन मान सरोवर गंगे, जहां से बिछड़ा वही मिला दूं, सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वही मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। क्या कहते हैं गरीबदास जी कि तुम यहां की जमुना गंगा और इन तीर्थों में स्नान करके मोक्ष मानते हो, यहां नहीं। ये सत्संग रूपी सरोवर दरिया है, इसमें नाव आकर के पुण्यात्मा विष्णु पुराण के अंदर और देवी पुराण के अंदर व्यास जी बता रहे हैं उसके लिए शुद्ध चित्त तीर्थ चाहिए, शुद्ध चित्त। और उस शुद्ध चित्त तीर्थ के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी, और परम संत के सत्संग से आपका पूरा रोग कटेगा, सब लाभ मिलेंगे, इन तीर्थों से नहीं मिलेंगे। फिर ये भी उन्होंने टिप्पणी की है कि परम संत का मिलना अति दुर्लभ है। जैसे कि श्रद्धालु इन वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को परम संत मानते थे, महर्षि मानते थे, इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया, इन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ, विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। तो उनका लास्ट में उसने फैसला ये कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत मिला तो वो शुद्ध चित्त तीर्थ से ही सभी पापों का नाश हो सकता है। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा तक जो सीमित है वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, उनका स्वभाव और भी गिर जाता है, उनके कर्म भी बिगड़ जाते हैं, वो हिंसा पर भी उतारू होकर के विनाश कर डालते, वो मेरी पूजा नहीं करते। अपनी पूजा के विषय में बताता है 16वें और 17वें 18वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16-17-18 में, के चार प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। एक आर्थ और दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि ज्ञानी मेरे को पसंद है, ज्ञानी को मैं पसंद हूं, वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने आन देवताओं की पूजा त्याग दी। और ज्ञानी कौन होता है, जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये दृढ़ निश्चय हो जाता है उसको। फिर सदग्रंथों के ज्ञान से यह भी निष्कर्ष निकल जाता है कि केवल एक परमात्मा है, उसकी पूजा करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तीसरा ये भी उनको निश्चय हो जाता है कि मनुष्य जन्म में यदि मोक्ष नहीं हुआ तो यह जीवन व्यर्थ है। इसके लिए उन्होंने तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकालकर वेदों का ओम नाम के जाप को और ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया। और साधना करते रहे। इसलिए गीता ज्ञान दाता सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार है, लेकिन ये मेरे वाली साधना ब्रह्म साधना तक ही सीमित रहे, मेरे वाली घटिया साधना तक ही सीमित रहे, ये इनका जीवन भी व्यर्थ हो गया। क्योंकि गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता, मेरे जन्म को मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी ऋषि कुछ कोई नहीं जानते। पुणात्मा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसने भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। अब जैसे गीता जी दयान प्रसाद के श्लोक 12 से लेकर 15 में बताया है कि केवल तीनों गुणों तक सीमित जिनकी बुद्धि है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक, इनका ज्ञान यहीं तक हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता ना तो न्यू डले ढो नीचे अन्य देवताओं तक ही सीमित है ये। फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति सैम आत्मा सुदुर्लभ, लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है सर्वम, वासुदेव का अर्थ क्या होता है, श्री कृष्ण नहीं है वासुदेव, तो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे, तो वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिससे कोई रजमा खाली ना हो, यानी सब जगह जिसका वास हो, सबको नियंत्रित रखता हो, जो सबके ऊपर व्यापक हो, जैसे भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरे भारत के ऊपर व्यापक है, ये भारत में वासुदेव है, अन्य मुख्यमंत्री केवल एक क्षेत्र में ये व्यापक है, वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं, सबके ऊपर अधिपति नहीं है। तो ये क्या बताता है कि ऐसा संत मिलना बड़ी मुश्किल से है जो ये बतावे कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण पूजा के योग्य और ना ब्रह्म से पूर्ण मोक्ष। वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं वो परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा वो वासुदेव जो सबका मालिक है वही सब कुछ है, वही मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है, वही वास्तव में अविनाशी है और वही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है, वही हमारे दुखों का निवारण कर सकता है और वही हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो यहां क्या बताया है कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं झाड़े, और ये निराकार निराकार कह के मूर्ख बना रहे थे अपने को, आंखों देखा जिन महापुरुषों ने क्या कहा है, मन मान सरोवर गंगरे जहां से बिछुड़ा वही मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे, कि हमारे ज्ञान को सुनो ध्यानत, कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को, काशी क्रोध काहे लेत हो बिना भजन नहीं ढंगरे, भाई कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। कहते सभी ग्रंथों का करोड़ ग्रंथों का एक ही अर्थ है किसी संत की संगत कर, तत्वदर्शी संत की। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो वैकुंठ में ना हो। परमात्मा बताते हैं कि यहां के स्वर्ग में हमने जरूरत नहीं जान की, क्योंकि वहां अपनी पूंजी नष्ट होती है। अपनी महिमा पर बताते हैं कि तुम ऐसा भाव रखना, यदि यहां का राम तुम्हें लेने आवे चलो तुम स्वर्ग में, कहते नहीं, मना कर देना उससे, तो यहां सत के संत के साथ रहने में जो तुझे सुख है कहीं पर नहीं है। आप पुण्यात्मा जैसे आप यहां से बाहर जाते हो वही मान बढ़ाई ईर्षा घर घर में आग लाग रही है। इससे भी ज्यादा ऊपर के लोकों में ऐसे ही देव हैं, ऊपर नीचे एक एक से ऊपर एक से ऊपर ऐसे। और जब आप यहां आते हो, क्योंकि आप एक प्रारंभ में जो भक्त यहां आते हैं तो उसमें संसारी गुण ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे सेट हो जाता आता है यहां पर। तो यहां पुण्यात्मा जानबूझ कर कोई पंगा पावा तो उसकी नालायकी है ना। यहां सबको एक जैसा बैठने को, एक जैसा खाने को, कोई भेदभाव नहीं। तो यहां राग द्वेष आप पे ना हो, राग द्वेष तो नहीं हो, आग्रही अलवा खा और मेरे मन में मिले मखाने ओनली, तो वहां द्वेष बन सकता है। तो ऐसे वहां फिर सतलोक में ऐसा ही है। कहते हैं कस देखो पुण्यात्मा परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालुओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। काशी के अंदर ही नकली गुरुओं ने, इन जालिमों ने क्या किया, एक क्रौत लगा दिया मानस काटने का, मनुष्य काटने का आरा लगा दिया, कसाई बना शुरू कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है उसी समय उसकी खोज में लगी है। काल ने फिर इसे गुमराह कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया और मिसगाइडेड कर दिया। पूर्ण रूप से इसने नामो निशान मिटा दिया पूर्ण परमात्मा का, नकली गुरुओं के माध्यम से अपने ही इन पुत्रों पर मां विष्णु महेश तक सीमित रख दिया सभी को। लेकिन आत्मा के परमात्मा की चाह गई नहीं। तो क्या हुआ, जैसे काशी के पंडितों ने गुरुओं ने एक धारणा पैदा कर दी समाज में कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर मरता है वो नरक जाता है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, भाई सच्ची सत भक्ति करने वाला और हमसे उपदेश लेकर साधना करने वाला, काशी मरोचे मगर वो सीधा सतलोक जाएगा, स्वर्ग से भी ऊपर जाएगा। ऐसे ही पुण्यात्माओं अच्छे कर्म करने वाला कहीं मृत्यु को प्राप्त हो चाहे मगर हो चाहे काशी में, वो अपने अच्छे स्थान पर जाएगा। और पाप करने वाला पापी चाहे मगर मरोचे काशी, सीधा वो नरक में जासी। तो यहां परमात्मा तो ऐसा कहा करते थे लेकिन कबीर जी के ऊपर किसी ने विश्वास हुआ नहीं, इन नकलियों का रंगना चढ़ गया था। तो सभी अपने अपने पूर्वजों को वहां काशी में रखने लगे, काशी ले जाके। तो वो गुरु प्रत्येक के होते ही थे, तो उन गुरुओं ने सोचा भी ये अलग से किराए पर रह कर धर्मशालाओं में रहेंगे, क्यों ना हम इनके बुजुर्ग बुड्ढों को अपने घर पर रख लें। तो उन गुरुओं ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, हमें पैसे दे दो इनके खर्चे का और हम ये हमारे पास रहे रहेंगे, इनको कथा सुनाते रहेंगे, जब इनकी मृत्यु होगी सीधे स्वर्ग जाएंगे, काशी में मरण तय। तो श्रद्धालुओं ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए नुछावर रहे, बहुत कुछ किया, हम क्या इतना नहीं कर सकते, 10-5 वर्ष के जीवेंगे ये। तो उन पेट भरों को भी देते किराया अलग से, वो 10 रुपये खर्च होते तो 20 देते उनको। तो वहां भीड़ लगी, प्रत्येक गुरु के घर में 20-20 बूढ़े हो गए और बूढ़ा देख कर ना उठा बुढ़ापे में, वो उठने का मतलब है उसकी सेवा, कभी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई हारी है, कभी उठाना है, कभी बिठाना है, नहाना है, कपड़े पहनाने। तो उन्होंने मुसीबत मोल ले ली, फिर उनके लिए जान का झाड़ बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग करी उन नकली गुरुओं ने, कैसा करते हैं, उन्होंने प्रोपेगंडा फैला दिया एक कि अभी भगवान की तरफ से क्रौत आ है ऊपर तय स्वर्ग तय, और जो जल्दी जाना चाहता स्वर्ग में वो क्रौत आता भगवान की तरफ से, वो केवल उसी की गर्दन काटता है जिसका आदेश ऊपर से होता है। वो क्या कर रखा था उन्होंने, एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों पक्की ईंटों की, और उसमें बीच में ऐसे खाली स्थान सा छोड़ रखा था, सुराख सा। क्रोध को पीछे रस्सों से हैंडल करते थे, लंबे पुली सी बनाकर, और गंगा के किनारे पर ला दिया। अब सब ने ये सोची भाई पिताजी, वो बुढ़े कहने लगे बेटा हमने मरना तो है ही, और नो कहे 50 रुपए में जो है ना, 50 रुपए टैक्स फीस रख दी उसकी, और ऊपर से स्वर्ग से क्रोध आता है और हमारा कल्याण कर जाता है, बेटा दया कर दो। बच्चा ने सोची मैं माता पिता चाहते हैं तो हम ये भी कर देते हैं, वो भी शुरू कर दिया। अब वह गेर के तीन चार बुढ़िया ने कट्ठे और ऊपर तो करो छोड़ जो गणेश थे वो काटने भी थे सारे उन्होंने, ऊपर तो दूर से करते भाई हे भगवान आपकी आत्मा हो तो स्वीकार करियो, वो उधर से हैंडल वो घुमाते फिर दूर उनकी आवाज सुनकर गुप्त। तो उनमें देखा था बुढ़ा बच जाता ना कटता हो क्योंकि ईसाई उनका सिस्टम था, एक दो कट जाता तो वो रोता बैठ के मेरा नंबर नहीं आया, और दूनी उत्सुकता होगी। तो हमने ये भी करना शुरू कर दिया भगवान मिल जाए किसी तरह। लेकिन पुण्यात्माओं परमात्मा तो उसके बताए विधान अनुसार ही मिलेगा, और वो विधान कहाँ है, वेदों और गीता जी में और सूक्ष्म वेद कबीर जी की वाणी में। तो क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे लेत हो बिना भजन नहीं डंगरे, और कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सतसंगरे। अब रात को आपको दिखाया था एक नकलियों के सांग एंड बैंड उवा वाई बक्के ने दुनिया का गुमराह कर रखा है, एक झलक आपको फिर दिखाते हैं। क्योंकि जब तक आप उनके विचारों को और तत्व ज्ञान रूपी तराजू में नहीं तोलोगे इतने वह आपने पखरे दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाते हैं जो अध्यात्मिक ज्ञान करता है नकलियों के साथ अपनी चल रही है।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है और इस संस्कृति में हर कोई अपने अलग अलग धर्म को मानता है और वो चाहता है कि उसे उसके जीवन में वो सभी सुख हासिल हों, उसको उसके जीवन में मुक्ति मिले, जिसके लिए वो अपने जीवन में अलग अलग गुरुओं को भी धारते हैं ताकि वो गुरु उनको उनके जीवन की नई राह दिखा सके, जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव ला सके जिनसे कि वो बिल्कुल भटक चुके हैं। और आपको ऐसी ही नई राह दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है।
गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैवेमतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं, ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है मेरे से एक रूप है। लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमां गतिम, यहाँ जो अनुत्तमां गतिम है क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूँ। स्वामी राम तीर्थ ने कहा जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमां गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान की गति नहीं।
प्रभु जी, यहाँ आपसे ज्ञान की बात और जानना चाहेंगे। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है।
यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने, इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयन्ति माम जना सुचार जना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञास ज्ञानी च भरतर सब, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक तो जो आर्त है जिनके ऊपर संकट है, दूसरे अर्थार्थी है जो धन की कामना करते हैं, और तीसरे जो ज्ञानी है, और चौथे जो जिज्ञासु है वो मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गृह ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूं, और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये मानते हैं कि जिन्हें पूर्ण ज्ञान है उनको वो बिल्कुल अपने समान मानते हैं।
बिल्कुल।
गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को भी अनुत्तम क्यों कह रहा है?
ये उसका देखिए मूल पाठ जो है वो है मामेवानुत्तमम गतिम। ये अनुत्तम गति नहीं है, और साधना को उन्होंने कहीं अनुत्तम नहीं कहा है, और अपनी साधना का तो साधना भगवान की कुछ है ही नहीं। भगवान साध्य हैं, मतलब सारे संसार के जो लोग हैं उनके लिए साधने योग्य भगवान हैं। तो सिद्धि जो होती है वो भगवान को प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वो सिद्धि होती है। तो भगवान की तो कोई अनुत्तम स्थिति है ही नहीं, और अब उनकी कोई साधना भी नहीं है। उनकी साधना है तो यह है कि वो हमको साध रहे हैं और हमको संभाले हुए हैं, और जितनी कठपुतलियां हैं उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं, ये उनकी साधना है कि वो हमको साध रहे हैं, बस यही। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान ने अपनी किसी उसके लिए नहीं कहा है कि मेरी साधना अनुत्तम है, वो ये कह रहे हैं उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए मुझे प्राप्त करना चाहिए, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग।
तो ये थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के विचार। अब आपको सुनाते हैं तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के विचार।